वृंदावन में प्रवेश कर लिया। सभी ब्रह्मा के लिए जरूरी नहीं है, जिनकी भावना ऐसी होगी उन्हीं ब्रह्मा के लिए संभव है, सब ब्रह्माओं के लिए यह संभव पर नहीं है। ये इतना अद्भुत है, ये मंत्र है। नाम और मंत्र में भेद मत रखो, ऐसा मत समझो कि यह मंत्र संसार को केवल दूर कर देगा। कृष्ण नाम है तो है, कृष्ण मंत्र है तो है संसार मोचन, ये कहा गया दोनों के लिए। यदि ऐसी बात नहीं होती तो कृष्ण मंत्र के द्वारा केवल संसार का मोचन हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे, विपत्तियां दूर हो जाएंगी। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो गुरु इस पूर्वपात के लिए, गुरु जी हमको आपने कैसा मंत्र दिया, मुझे पागल ये कर रहा है। मंत्र जपते जपते मैंने देखा एक सुंदर गोपाल वहां पर प्रकटित हो गया, बांसुरी बजा रहा था, अत्यंत मनमोहन उसका रूप, त्रिभंग रूप से वो खड़ा था। मैंने उसे देखा और लपक कर दौड़ा उसको पकड़ने के लिए, और वो धीरे धीरे पीछे पीछे हटते हटते मैं जो ही एकदम निकट में गया, न जाने कहां अंतर ध्यान हो गया और मैं वहीं पर गिर पड़ा। मुझे होश नहीं, जब आंखें खुली तो देखा जी नहीं। इसलिए कभी मैं रोता हूं, कभी मैं हंसता हूं, कभी कुछ करता हूं। गुरु जी ये क्या कैसा आपने मंत्र दे दिया? उन्होंने कहा मंत्र का फल तो यही है, यही मंत्र का फल है कि मंत्र कृष्ण रूप में बदल गया। तो बदलाव तो महामंत्र करने से सभी ऐसा ही होता है। इसलिए अभी हम लोगों के साधक जीवन में मंत्र को खूब श्रद्धा के साथ में जप करने की जरूरत, अन्यथा ये अपना प्रकाश नहीं देगा। इसलिए ऐसा करते करते नाम क्या चीज है ये पीछे हम लोग इसका अनुभव करेंगे। हरे कृष्ण नाम ये साधारण नहीं, बहुत ही दुर्लभ, और इसमें समस्त भाव मंत्रों के साथ इसमें भरे पड़े हैं। ऐसा सोच करके हरिनाम और ये कृष्ण मंत्र दोनों ठीक रूप में करना। उन्होंने बजाया यह और गोपियां अपने अपने घरों से दौड़ करके चली आई। इसका वर्णन संक्षेप में किया गया, अभी अधिक समय नहीं है, अभी बहुत श्रीमद् भागवत का अंश बाकी है। एक और चीज मैं बतलाऊं, गोपी गीत में हम लोगों ने ये श्लोक सुना और उसका वर्णन भी संक्षेप में हुआ, उसको और थोड़ा सा स्पष्ट रूप में समझो। अक्षमताम फलमिदम न परम विदा, मैं आंखों का फल कृष्ण दर्शन के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं जानता। अक्षम फलमिदम न परम विदाम, इस बार सत्ता पशुन अनुदेश यथोर वयस्य वक्तम ब्रजेश सुतयो अनुदेविष्टम जैवानुपीतम अनुरक्त पदार्थम। कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, राम इत्यादि सभी उनके साथ में हैं, कोटि कोटि गैयाएं चल रही हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। उस समय में कृष्ण अपनी आंखों से करुणापूर्वक दर्शन करते हुए देखते हुए कटाक्ष से बात कर रहे हैं गोपियों की तरफ में। सखियों यदि इस रूप को नहीं देखा तो आंखों का फल और दूसरा कुछ नहीं है, व्यर्थ गई आंखें। भगवान आंखें नहीं देते तो वो बहुत ही अच्छा था, आंखों का तो फल यही एक है। यहां पर बतलाया गया ब्रजेश सुतयो अनुदेवि दुष्टम, साधारण ये अर्थ है ब्रजेश सुतयो, ब्रज के जो सुतयो दो लड़के हैं, ये दो वचन कौन, कृष्ण और बलदेव, राम और सुतल। बलदेव जी को भी यहां पर नंदनंदन बनाया गया है, माना गया है, क्योंकि ये राम भी बलराम भी नंद बाबा को ही पिताजी पिताजी कहते थे। वो जानते नहीं थे कि वसुदेव जी हमारे पिता हैं, और जानने पर भी वो नंद बाबा को ही ऐसी श्रद्धा के साथ में अपने संपूर्ण रूप से पिताजी के रूप में मानते थे, और शास्त्र में भी ऐसा कहा गया। इसलिए यहां पर दोनों कृष्ण और बलदेव सुतयो ये गोपियां कर रही हैं, ये दोनों जो जा रहे हैं उनमें जो पीछे हैं आगे आगे बलदेव जी और पीछे पीछे कृष्ण, उनका यह मोक्ष कटाक्ष, उनसे जो कटाक्ष निकल रहे हैं और जो चल रहे हैं उनका रूप नहीं देखा तो ये जीवन बिठा गया, आंखें बिठा गया। पहले कहा दोनों के लिए, कृष्ण और बलदेव का जिन्होंने दर्शन नहीं किया उनकी आंखें विफल हुई। फिर बतलाया क्या, वो दोनों जो कृष्ण बलदेव जा रहे हैं गोपियों का दृश्य है कृष्ण, इसलिए जो पीछे आ रहे हैं और क्या कर अनुदेनु जुस्तम जो देनु बजाते हुए जो पीछे चल रहे हैं उनके कटाक्षों को जिन्होंने दर्शन नहीं किया आंखों का फल व्यर्थ गया, उनकी आंखें व्यर्थ है, उनको अंधा ही होना चाहिए। फिर कर रहे हैं, फिर उसका एक और गुण तात्पर्य कर रहे हैं, वो बतला रहे हैं ब्रजेश सुतयो, दो वचन हुआ, ब्रजेश दो हैं, एक नंद बाबा है एक शेर और एक सवा शेर है। एक शेर कौन है, नंद बाबा, और सवा शेर कौन है, ब्रजवान महाराज, ये दोनों ब्रजवासी हैं, ब्रज ब्रजेश हैं। नंद बाबा की 9 लाख गायें और उनकी हैं 11 लाख गायें, 9 उनका एक गाय 2 लाख और अधिक, वो ही संपत्ति है गोधन, जिसको गोधन होगा वही बड़ा होगा। नंद बाबा को कितनी संतानें हैं,
एक
संतान, वो भी संदेहवाचक, वो भी संदेहवाचक, और विश्वभानु महाराज की 3 पहली है, पहले हैं श्री राम जी, दूसरी है श्रीमती जी, और तीसरी है अनंग मंजुल। तो इससे भी नंद बाबा से ये कम नहीं पढ़ते हैं, सभा से ही पढ़ेंगे। तो ब्रजेश सुतयो का तात्पर्य है सुतश्च सुताश्च सुतयो, कृष्ण ब्रजेश नंद नंदन के पुत्र हुए और राधा जी विश्वभानु महाराज की पुत्री हुई। एक सुता एक सुत, सुत कृष्ण और सुता ये राधिका जी, राधिका जी कृष्ण चंद्र जी और रस स्वरूप कवि हैं, यदि राधिका जी हैं, राधिका का बिना नहीं कुछ है, केवल मदन ही है, और जब राधिका जी होती हैं तो ये मदन मोहन होते हैं, इसलिए राधिका का होना जरूरी है ब्रज में कृष्ण के साथ में, इसलिए सुत से कृष्ण हुए और सुता से हुई राधा जी। इन दोनों का ब्रजेश सुतयो, इन दोनों का ही बोध होता है, राधा जी का भी और कृष्ण का भी, सुता और सुता सुतयो। इसलिए दोनों को यहां पर कह रहे हैं कि दोनों जब कृष्ण अकेले यदि कटाक्ष पात करें सुंदर हो, कृष्ण तो सुंदर है ठीक है, सखाओं के साथ में है तब एक तरह के सुंदर हैं, यशोदा मैया की गोदी में है तो एक तरह के सुंदर हैं, और गोपियों के बीच में है तो एक तरह से सुंदर हैं, और राधा जी के साथ में जब विलास पारायण है तब उनका सौंदर्य कितना है, तभी वो मनमत है। इसलिए यहां पर राधा जी के साथ में यदि कृष्ण को कटाक्ष पात करते हुए कोई देखे, यही समस्त
आंखों के फलों का चरम ये फल है, इससे बढ़कर के और कोई फल नहीं। ये इसका तात्पर्य। इसमें और भी बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं, समय अभाव से अभी हम इसको प्रकट न कर सकते, पीछे हम लोग। अब आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा जहां से बंद हुई थी कल, और वहां से आप लोग सुन और सावधानी के साथ में सुनेंगे। पाठ से भी श्रवण कम नहीं, और मैंने पहले भी बतलाया था पाठक से श्रोता लोग भी कम नहीं। हो सकता है पाठकों से भी श्रोता लोग अच्छे गुण वाले और अधिक उन्नत हों। उनका स्वभाव है बड़े प्रेम के साथ में सुनते हैं, इसलिए बड़े प्रेम के साथ में कल से जहां कथा हमारी स्थगित हुई थी उसके बाद से आप लोग पंचासन देवता लोग बड़े आनंदित थे। मथुरा के सभी लोग आनंदित हो गए, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, लोगों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग बड़े प्रेम से कीर्तन करने लगे, इसलिए हम लोग भी कंस मारा गया, यादवों का कष्ट दूर हुआ, पृथ्वी का कष्ट दूर हुआ, इसलिए हम लोग थोड़े से कीर्तन यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोग श्री कृष्ण गोपाल हरे गोविंद हे अंदर तस्मै श्री गुरवे नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृतासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यन्त्र प्रजन्तमनुते तमपेतकृत्यन् द्वैतान्यनो विरहदातर्याजुहाव उपेति तन्मयतया कर्मोभिनेदु तं सर्वभूतरिदनं विमानकोऽस्मिन्। यत् किं करोमि सुभौता तत्कारकृतानि नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले जज्ञापदारसिंहे सुभानुजाय तथके निपुण्य भवनां। अरे हम लोगों सवेरे के विभाग में ब्रज की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन चल रहा था। उसमें राजस्थान का अध्याय और भ्रमण गीत इत्यादि का वर्णन था। उद्धव जी ब्रज में गए हुए हैं, वृंदावन में मथुरा में कृष्ण शोर कर रहे हैं। मथुरा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें अपना दुखड़ा रू गोपियां कृष्ण के विरह में तपता है, यह बात ठीक है, किंतु वो अपना भार कुछ हल्का कर लेती हैं परस्पर बातें करके। यदि नदी में खूब बाढ़ आए तो जोरों की बाढ़ आए तो नदी अपने दोनों किनारे पर अपने अतिरिक्त जल को विभाग कर देती है और चारों तरफ में फैल जाती है। उसका भार कम हो जाता है। यदि किसी के हृदय में कोई गंभीर वेदना हो, दुख हो, यदि वो किसी से कह ले अपने दुख को, कुछ कह दे तो उसका दुख कुछ हल्का हो जाता है, अन्यथा वो व्यक्ति मारा जाए। गोपियां एक दूसरे से अपने दुखों को प्रकाश करती हैं बिना की भावना, और इसी में वो लगी रहती। किंतु कृष्ण अपने दुख को किससे कहें, जो समभावापन्न हो उससे अपने दुख की बातें कही जाएगी, जो कि स्वजातीय नहीं है उसको नहीं कहा जा सकता। मथुरा में कृष्ण का कोई भी स्वजातीय नहीं है जिसके अपने दुखों को बतला सके। इसलिए सोचा उद्धव मेरा प्यारा सखा है, बहुत दिन हो गया हमारे साथ रहते, इसको अपने ज्ञान का और भक्ति का भी कुछ अभिमान है कि मैं कृष्ण का सबसे अधिक प्यारा हूं। यदि उद्धव को यदि वृंदावन में भेजे और उस पाठशाला में ये जाए जहां पर मैंने प्रेम की शिक्षा पाई है, और उस पाठशाला में जाकर अपना नाम लिखाए, कुछ दिनों तक पढ़े, शिक्षा पाए, तो वो हमारे कुछ बातों से करने के लिए हमारे समझाती हो सकेगा। मैंने जिसको अपना प्रेम का गुरु बनाया है श्रीमती जी को, किशोरी जी को, यदि प्रेम की दीक्षा उससे वो ले ले तो हम दोनों गुरु भाई हो जाएंगे। उद्धव जी मेरा गुरु भाई हो जाए और तब मैं उसको हृदय खोल करके उससे बातें कर सकूंगा, अभी इस समय बात नहीं कर सकता। उद्धव को सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा, सांत्वना उद्धव के वाक्यों से हो भी नहीं सकता, वो तो होगा तो कृष्ण वाक्यों से ही यह संभव पर हो सकेगा। जैसी तैसी बातें उनको संदेश दिया, संदेश देकर के उन्होंने भेजा। वो गए ब्रज में, वो बड़ी निगूढ़ बातें थी, इधर रख करके जाओ, बड़ी निगूढ़ बातें थी। कृष्ण ने संदेशा भेजा अपने भावनाओं को गोपियों को सांत्वना देने के लिए। उद्धव जी ने जो समझा वो अपनी भावना से समझा, उन्होंने ठीक कृष्ण की बातों को समझा या नहीं समझा ये कहा नहीं जा सकता। और गोपियों ने उसको सुनकर के कैसा अनुभव किया वो गोपियों की भावना के ऊपर। इसलिए कृष्ण ने एक भेजा, उन्होंने पीयूष की भांति, जैसे पीयूष मनी ऑर्डर लेकर के जाता है, कोई चिट्ठी ले जाता है, चिट्ठी पढ़ता नहीं और रुपये को अपने हजम नहीं करता, करने की सामर्थ्य भी नहीं है, अन्यथा वो जेल चला जाएगा। इसलिए उद्धव जी अपनी बात को मिला करके अपनी भावना के अनुसार उसको नहीं कहा। कृष्ण ने जो कुछ संदेश दिया था जैसा नपे तुले वैसे ही शब्दों में उन्होंने गोपियों से कहा। किंतु उद्धव जी तो कोई जड़ व्यक्ति है नहीं, उन्होंने उस चीज को अपने अनुसार में समझा और गोपियां समझी क्या, वो अपने अनुसार में उसको समझी। इसलिए टीकाकारों ने इसके संबंध में यह सब बतलाया, उद्धव जी पहले तो नहीं समझे किंतु 10 महीने तक उनका संग जब किया तो कुछ कुछ समझे। उद्धव पहले अपनी ज्ञान की गरिमा, ज्ञान की पोटली गठरी लेकर के गए, गोपियों ने ज्ञान गुदड़ी में उनकी गठरी को हार तोड़कर और जमुना में बहा दिया, और उन्होंने जब गोपियों के इन भावों को देखा जिसका भी वर्णन अभी किया गया, भ्रमर गीता, भ्रमर गीत इत्यादि, भ्रमर संदेश देखा। जिस प्रेम के ये गोपियां इतनी ऊंची शिखर है, मानो एवरेस्ट से भी ऊंची है। ये ज्ञान की टोपी लगा करके गए थे, निकट में जाकर के देखा 3.5 हाथ के उद्धव जी, जबकि ऐसे देखा और 7 मील ऊंची एवरेस्ट की पहाड़ी ऊंची चोटी, ऐसा किया तो टोपी नीचे से गिर गई। इतना ऊंचा इनका प्रेम, मैं तो आज तक समझता नहीं था, मैं तो तत्वज्ञान लेकर कहीं विचार करता था, आज मैंने समझा जो प्रेम किसको कहते हैं। कुछ समझा किंतु अनुभव नहीं कर सका, ये ऐसी बात है। यदि उद्धव जी समझते गोपियों के प्रेम को इतना, ये इतना ऊंचा है, तो उद्धव जी ने ये प्रार्थना क्यों की, आसाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदा बने किमत फुल मल्लौ सकी, ये प्रार्थना क्यों, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणु मोक्ष। मैं पहले उन्होंने सोचा कि गोपियों की चरण की वंदना करूं, किंतु वंदना करने में समर्थ नहीं थे। फिर गोपियों की चरण धूलि की वंदना की, मैं इसकी वंदना भी नहीं कर सकता, मैं गोपियों की एक चरण रेणु की एक की केवल वंदना करो, रेणु एक वचन है और एक वचन में वो राधा जी के चरणों की एक धूलि को ही बहुत दूर से जिस दिशा में है बस उसी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? वो भाव मेरे लिए हमारे स्वरूप में ही नहीं है, वृंदावन का गुल्म लता नहीं बन सकता मैं उनकी धूलि को ग्रहण करूं या धूलि बन जाऊं, ये भी संभव उनके लिए नहीं। प्रेम को मान लिया जाए अखंड वस्तु, उद्धव में धूलि के एक कणा भी होने की संभावना नहीं, इसलिए धूलि की वंदना कर रहे हैं, हो नहीं सकते। यदि हो गए होते वहां की धूलि तो फिर प्रार्थना क्यों कर, यहां की तीर्णता गुणों को की वंदना कर रहे हैं, किस लिए? गोपियां आविष्कार के लिए जा रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए, बड़ी जल्दीबाजी में उन्होंने गले का हार पहन लिया पैर में और कमर की करधनी पहन ली गले में, आधी आंख में अंजन ही लगा पाई, अस्त व्यस्त होकर के चल रही है, शुद्ध बुद्ध नहीं। अन्यो अन्नम अलक्षितोद्यमा, कोई दूसरे किसी को नहीं देख सकी, बावरी बन गई, चल पड़ी। तो कारण है जिसे ऐसा भाव तो मेरे लिए संभव नहीं, शायद कृष्ण ने इन्हीं सब चीजों को देखने और समझने के लिए मुझको अवकाश दिया था, यही उसमें पढ़ रहे हैं अभी, शिक्षा ले रहे हैं। वो भावना ब्रह्मा के लिए भी, उद्धव के लिए, नारद के लिए भी संभव नहीं है। प्रेष्ठी रति असुलभम, उन लोगों के लिए संभव नहीं है, गोपियों का इतना ऊंचा भाव है, इसलिए उसकी बहुत दूर से चरणों की वंदना कर रहे हैं, उन भावों को अपने में संक्रमित करने के लिए, किंतु संभव पर नहीं हो सका। इसका प्रमाण ये, जबकि उद्धव जी अभी वर्णन में आएगा, जब 10 महीने के बाद ने सब सोचा विचार किया, वो प्रेम की ये ध्वजा है गोपियां, इनके समान भूतों न भविष्यत और कोई नहीं होगा, किंतु इतना इनको दुख क्यों, कृष्ण के विरह में इतना तड़प रही है, कहीं मैं कृष्ण को छोड़ करके आया और मैं भी कृष्ण के विरह में ऐसे तड़पने लगू तो, यदि हमको भी छोड़ दे तो अब यहां हम नहीं रहेंगे, हम तो अब चलेंगे मथुरा। गोपियों से पूछा,
बतलाया, पूछा आप जब मैं आया, ए तुम लोग यह मत करो, जाओ तुम लोग चुपचाप रहो, रख दो चुपचाप, मैं कृष्ण से यहां जाने के बाद में क्या कहूं, दस बार पूछा गोपियों से मैं कृष्ण को यहां से जाऊंगा तो क्या कहूंगा, तुम्हारा संदेश तुमको चाहिए, उन्होंने तो बहुत कुछ संदेश दिया, तुम भी कुछ संदेश, राधा जी को कुछ कृपा हो गई उन पर, बोली ये देखो हमारा हृदय तो वज्र के समान है, आपने बार बार कहा कि कृष्ण तुम्हारे विरह में अत्यंत तड़प रहे हैं, किंतु यदि आप ये कहें कि गोपियां आपके विरह में तड़प रही हैं तो कृष्ण का हृदय नवनीत से भी कोमल है, वो एक सेकंड भी बचे नहीं रह सकते, इसलिए खबरदार उनको ये मत कहना जो गोपियां आपके विरह में तड़प रही हैं, बल्कि ये कहना गोपियां बड़े आनंद से हैं, खा पी रही हैं, बड़े आनंद से हैं, वो तो आपको भूल चुकी हैं, ऐसा कहना, और ऐसे कहना धीरे धीरे, एक दिन आज थोड़ा सा कहना, कल मेरे हम लोगों की विरह की बातें थोड़ी सी और बढ़ा करके कहना, दस दिन के बाद में जब कृष्ण सुस्त हो जाए तब फिर कहना, ऐसे कहना जैसे कोई पुराना कपड़ा हो और जल में भीग जाए और उसके जल को दूर करने के लिए जैसे ऐसे निचोड़ते हैं, यदि जोर से निचोड़ दें तो क्या होगा, कपड़ा फट जाएगा, तो कृष्ण का हृदय बड़ा कोमल है, यदि आपने हमारी विरह की बातों को कृष्ण को एक बार में सुना दिया वो प्राण धारण नहीं कर सके, इसलिए धीरे धीरे उनसे कहना, उद्धव जी सुन करके और भी चमकित हो गए, ऐसा प्रेम कानून का भाव हमने जगत में कभी नहीं सुना था, ये केवल मात्र भागवत का ही संदेश है, इसलिए और जगह हम देखते हैं कृष्ण की आराधना सभी करते हैं किंतु कृष्ण ब्रज में आए और भागवत में जो वर्णन मिलता है इसमें सर्वत्र ही देखा जाता है, कभी अपनी मैया के पैया पढ़ते हैं, कभी गोपियों की पैया पढ़ते हैं, कभी कुछ करते ही वो आराधना करने के लिए आए थे, इसीलिए आराधिका में नहीं होता है, कृष्ण के द्वारा जो आराधित हैं वो राधिका जी, कृष्ण न आराधिका, उद्धव जी अब कुछ कुछ समझे और तब फिर वो गए, इसकी अनुभूति करना बहुत ही कठिन है, जब तक कि साधुओं के संग में, रसिक वैष्णवों के संग में, तात्विक वैष्णवों के संग में न रहा जाए तब तक श्रीमद्भागवत का एक भाव का भी अर्थ समझना बड़ा भारी कठिन है, यदि भागवत का अर्थ समझ लिया थोड़ा सा भी अनुभूति हो गई तो सुखदेव गोस्वामी की स्थिति हो जाएगी, हम लोग क्रमशः चलेंगे, इसको सुनेंगे, समय इतना नहीं है, अभी 5 बज गया, अभी दशम स्कंद की भी बहुत सी कथाएं रसमयी भरी पड़ी हैं, इसलिए मैं अपना वक्तव्य ही समाप्त करता हूं, अब यहां से कथा आरंभ होगी और कल जैसा आज जहां तक हो सके दशम स्कंद पूरा करने की हम लोग सोच रहे हैं, नहीं तो सवेरे करके फिर दशम एकादश तक कल हम लोग समाप्त करेंगे द्वादश तक, और परसों सवेरे पूर्णाहुति होगी, यज्ञ होगा, और शाम को बड़े बड़े भागवत यहां के रसिक वैष्णव लोग हैं जो भागवत के बड़े बड़े विद्वान हैं वो लोग आएंगे, 4 बजे से उनका कार्यक्रम है, 4 से लेकर के 7 तक 8 तक बड़े बड़े विद्वानों की सभा में, और सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्य होंगे, आप सभी लोग जैसे योगदान कर रहे हैं और भी संख्या में आप लोग योगदान कर रहे हैं, श्रीमद भागवत से एकादश स्कंद का कुछ श्रवण किया, आप लोग उस सार रूप में श्रवण करें, एक बहुत ही बड़ा धनी आदमी था, करोड़ों पति अरबों पति था, देखो भाई, भागवत सुनने पर यहां पर ऋषि महर्षि लोग आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं, वहां पर माया देवी भी अपने पुत्र कलत्र स्त्री पुत्रों के साथ में आती है, और वो सबसे पहले आंखों पर बैठती है, लाखों मन का भाग लेकर, ऐसे देखने में भाग नहीं दिखता, आलस्य प्रमाद ये सब उनके लड़के हैं। और लड़कियां क्या है, जम्भाई, जम्भाई जो आती है ना, ये उनकी लड़कियां हैं। ऐसे कितने लड़के और लड़कियां उनकी हैं। कथा सुनने में पहले आवाज आया, वो आकर कहता जरा हाथ ऐसे बांध करके बैठो, फिर कोई ऐसे कहेगा कि ऐसे बैठ जाओ, कोई ऐसे बैठ जाएगा, आंखों पर लाख मन पत्थर बांध करके माया उस पर डाल, चाहे आप आंख ऐसा खोल ले जाए वो आंख खोलने नहीं देगी। जितना भी सावधान करो, देखती कि हमारे राज्य से ये निकल करके चले जाएंगे, बड़ा सुगम पथ है, ये भागवत श्रवण कर रहे हैं,
आलस्य प्रमाद निद्रा इत्यादि सब को दे करके आती है। तो पहले वो ऐसे करके बैठेगा, फिर ऐसे बैठेगा, फिर एक पैर इधर कर देगा, फिर जम भाई आ जाएगी, और इसके बाद में कथा कहां गई कुछ पता ही नहीं, भागवत उनका सुनना हो तो फिर उनकी भागवत कथा नहीं सुननी हुई। इसलिए सावधानी के साथ में ये कथा सुननी चाहिए। देखो एक बहुत बड़ा भारी धनी आदमी, अरबों पति करोड़ों पति था, स्वर्ण मुद्रा पूरा जवाहरात सब उसके पास में थे। लड़का बहुत छोटा था, एक ही लड़का उत्तराधिकारी, और उसकी मृत्यु होने लगी तो अपने किसी सखा को, अति ज्ञात नाम के किसी सखा को बुला करके कहा कि भाई देखो, मेरा बच्चा कभी छोटा है तो तुमको बतला देता हूं, मैं इस घर के आंगन में के पूर्वी तरफ में मैं धन रत्न इत्यादि सब कुछ गाड़ करके जाता हूं। बच्चा का समझेगा नहीं, इसलिए जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तब फिर उसको तुम बतला देना और उसकी सहायता कर देना, जिससे कि वो फिर मरे नहीं, निर्धन न हो, धनी कैसा पता चलता है। ठीक है, ये क्या करते उसकी मृत्यु हो गई और अभी ब्याह तथा भी कहीं चला गया। कुछ दिनों के बाद में, 15-16 वर्षों के बाद में उसका बच्चा बड़ा हुआ, घर में खाने के लिए नहीं, एक पैसा भी नहीं, परम निर्धन हो गया, दिन दिलाने लगा, कोई मांगने से भी नहीं देता उसको कुछ। एक दिन वही पापी ज्ञान सखा उठता आया, अरे बेटा तू खाने पीने मर रहा है, तुम तो निर्धन नहीं है, तुम तो अरबपति है, आप मुझे क्यों पिला रहे हैं, मैं तो दरिद्र हूं, एक दाने अन्न के लिए मर रहा। ताजे नहीं तो ऐसी बात तो नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी बहुत अगाध संपत्ति रख करके गए हैं, और तुम्हारे घर नहीं है, है तुम धन किंतु तुमको पता नहीं है, तुम यदि आसानी से इस चीज को वहां से निकाल लो तो बस उसी दिन या रातों रात ही तुम अरबपति करोड़पति बन जाएगा। काजू सिंह मेरे घर में और मुझे पता नहीं कहां ऐसी बात है, वो हमारे पुत्र तुम्हारे पिताजी उन्होंने मुझसे बतलाया था, मैं जानता हूं। अजी कहां है, यदि नहीं बतलाए तो कहते हैं यदि मैं नहीं बतलाऊं और तुम खोलो, यदि तुमने पश्चिम घर के पश्चिम की तरफ में खोदा अजगर सब बैठा है, तुम्हें तत्ना दस लेगा कि मर जाएगा, धन भी नहीं मिलेगा मरेगा। यदि दक्षिण की तरफ तुमने किया तो वहां पर जक्ष बैठा है, तुम्हारे समस्त परिवार को मृगों में वो समाप्त कर देगा। यदि तुमने उत्तर की तरफ में खोजा तो वहां पर बहुत से वर्ग भिंगरू मैंने ततैया लाल लाल वाले होते हैं, यदि किसी ने खोद दिया ना तो जितने दिन दौड़ोगे वो पकड़ करके जरूर काटेगा, और वो यहीं पर बैठता है, अभी यहीं पर बसता है, मुंह खुला देगा, जाल खुला देगा और हजारों एक साथ में पकड़कर तुम्हें मार डालेंगे। यदि रास्ता मालूम नहीं है, घर में भी वह चीज सारी संपत्ति है और टूटा टूटा कहीं छूट गया तो तुम मारे जाओगे, चलो मेरे साथ में पूरब की तरफ में ले गया, बस थोड़ा सा सोचना है, आसानी से तुमको मिल जाएगा, बस पूरब दिशा में लेकर के घर के भीतर में और उसने थोड़ा सा खोद दिया और उसमें लाखों करोड़ों के अरबों खरबों जवाहरात हीरा और ये सब गया और राजधानी हो गया। अभी हम लोगों ने दशम स्कंध की कथाएं सुनी, वो हीरा रत्न अमूल्य रत्न है सब, किंतु कहां छिपा हुआ है ये सब, रास्ता नहीं मालूम होने से सब छिपा हुआ है, किंतु रास्ता मालूम नहीं। आजकल के पंडित लोग अधिकांश लोग रास्ता नहीं जानते, भागवत को बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए, तो वो हो गया पश्चिम की तरफ, उन्हें वो सर्प डसेंगे, अर्थात उसको तो वो चीज तो मिलेगी नहीं, बल्कि उससे अपराध होकर के और मरेंगे। यदि दक्षिण की तरफ में खोदा कर्म ज्ञानी होकर के भगवान की भक्ति से भागवत की कथा से धन जल पुत्र इत्यादि ले लिया तो फिर उसी में रमते रह जाएंगे, तो राशि लक्ष्य के जोनी में भ्रमण करते हुए अनंत जन्म उसमें। यदि भागवत की कथा दूसरे रूप में हमने सुना ज्ञानी होकर के इससे मुक्ति मिल जाएगी तो वो दक्षिण दिशा है, मुक्ति के लिए खबरदार है भागवत भक्तियों, बस भगवत प्रेम के लिए योगियों के प्रेम के लिए सुनो, ये पूर्व दिशा है। अब ये पूर्व दिशा का निरूपण करने के लिए नौ जोगेंद्र आ रहे हैं और वसुदेव महाराज जी से बड़े सीधे साधु शब्दों में इस सब का बड़ा सुंदर वर्णन किया। मैं समझता हूं कि समय में सब लोग अभी दांतियों में सो रहे हैं, कथाओं के समय में तो रुचिकर होता है सुन लेते हैं, किंतु जब रास्ता बतलाने लगे ना तो उसी समय सो गए तो वो धन संपत्ति मिलेगी कहां से, इसलिए सब कथा सुन करके एकादश और द्वादश कथाओं के स्वर्ण में जहां पर वो बतला रहे हैं और उसी समय में सो गए तो कुरान का मालूम हुआ जहां का तहां वो दबा रह गया, न धन मिला न संपत्ति मिला न कुछ भी नहीं मिला, उल्टे सर्प यक्ष और विभिन्न जोनियों में जाकर के और उसी में रह गए और ये धन से वंचित रह गए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि एकादश स्कंद जो है वो भगवत कृपा और ये लीलाएं जितनी है चिंतामणि उसको पाने के लिए अभी रास्ता बतलाया, वो रास्ता क्या बतलाया संक्षेप में, यदि किसी से पूछू ना तो गड़बड़ हो जाएगा, मन सबका खराब हो जाएगा, क्योंकि मन से सुना नहीं तो इतना सुन करके सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मत करो भाई। ये एकादश और द्वादश स्कंदर रास्ता बतला है, वो रास्ता क्या बतला उस समय
दो चार शब्दों में मैं बतला दूंगा, इसके बाद में कीर्तन और आचरण बतलाया। कर्मण्यारभमानानां दुःखहस्तैः सुखाय च पत्ये उपाप विपर्यासं मिथुनचारिणाम। सब लोग दुख दूर करना चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, सभी लोग सुख चाहते हैं, किंतु उसके लिए जो उपाय अवलंबन करते हैं उससे तो कभी दुख दूर होता भी नहीं है और न सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि जो जो काम सुख के लिए करते हैं वही दुख का कारण बन जाता है। जैसे विवाह किया, सबके लिए मैं नहीं कह रहा, अधिकांश ऐसा ही होता है, इसलिए आप लोग सावधान रहेंगे इन सब विषयों से। तो लोग विवाह करते हैं, विवाह करते हैं, विवाह होने के बाद में लड़का लड़की नई संपत्ति उत्पन्न हुई, ताकि हमारा घर सब सुना हो गया। देखा, पहले तो शादी नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई, शादी होने के बाद में जब लड़का नहीं हुआ तो भी मन बड़ा दुखी रहा। अच्छा, एक के बदले में दस लड़के हो गए, बड़े सभी गुणवाणी गुणवाणी थे और वो लोग भी वाणिज्य व्यवसाय इत्यादि में सभी बड़े अच्छी तरह से हुए। 15-16 वर्ष की अवस्था तक जब तक की हमने उनका पालन पोषण किया और जब तक शादी नहीं थी तब तो खूब आदेश मानते हैं सभी लोग, बहुए भी आ गई। अब बहुए तो बड़ी होंगी, लड़के भी तो बड़े होंगे, वो अब 30-35 वर्ष के 40 वर्ष के हो गए, उनके भी तो कुछ स्वतंत्रताएं हैं, अब वो अपने स्वतंत्रताओं को उपयोग करने लगे जैसे कि पिताजी और माताजी करती थी। अब ये क्या हुआ, अब घर में विरोध बढ़ने लग गया, लड़के पिताजी का आदेश नहीं मानते। अब वो जो शादी की थी बच्चों की और पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब वो तो दुख का कारण बन गया। अंत तक जब देखते हैं कि ये आदेश हमारा नहीं पालन करते, जो अभी अभी छोटी सी बच्चियां हैं उनके लिए भी ऐसा ही समय आएगा, जो विवाहित अभी किशोर किशोरी हैं नवजोत जोत उनके लिए भी यही आएगा। अरे उनको तो छोड़ दो, आजकल शिष्य नामधारी साधक भी अपने गुरु की बात नहीं मानता, दो चार श्लोक उसको याद हो गए, साधन भजन करने की कोई जरूरत नहीं, पक्के जो गाल बजाना सीख लिया वो बड़े पंडित हो गए। इसी तरह से ये कलयुग का वर्णन अंत में आया है, ये सब आएगा, इसलिए कहते हैं जो जो भी कर्म करो, आज संयुक्त राष्ट्र में जितने विश्व के मनुष्य हैं वो सब एकत्रित होकर के विश्व में शांति हो कल्याण हो ये चाह रहे हैं, उसके लिए चेष्टा चल रही है, किंतु वो चेष्टा नहीं करते जो करनी चाहिए। निंदा किसी की मत करो, ये कर रहे हैं सब, चोरी मत करो, अपने माता पिता गुर्जनों की बातों तथा जिसको सम्मान दो, ये सब करते हैं। सर्वपरि आस्तिक होकर के भगवान का भजन करते हुए ये सब करो, तो होगा कहां से। अभी अमेरिका इत्यादि दूसरे राष्ट्रों को दबाव देता है, किस लिए, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरे देशों को उपकार के लिए नहीं, उसी प्रकार सबका संयोग, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं, ऐसे स्वार्थपूर्ण होकर के जितने भी कर्म करेंगे उसे अशांति बढ़ेगी, कभी भी शांति नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं कर्मण आरोहमानानां दुःखं तैः सुखाय च, वो सुख के लिए जो काम करते हैं विवाह शादी धन वाणिज्य व्यवसाय, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से मधुमक्खी ने अपने बच्चों के लिए अपने लिए, वो भी जाड़े के दिनों में वर्षा के लिए मधुमक्खी
रथ एक एक पुलों से लेकर के सत्ता बनाई और दुष्ट बंदरों ने और दुष्ट वो जो हैं वो जाते हैं बैरिये इत्यादि वो सब पहुंचे और उनको बंध लग गई, मुख से पानी गिरने लगा बंदरों के और उनके भी, और उन्होंने जाकर के नीम के पत्तियों से झाड़ दिया या मंत्र भी जानते हैं झाड़ दिया, वो सब जैसे के तैसे रह जाएंगी और उनको छप्पे को उतार कर अपने कपड़े में बांधकर और खुद जोर से एंग दिया। मधु तो आया ही और मधुमक्खियों का सारा जितना रस था प्राण के समय सब और मधुमक्खी ने बनाया किस लिए छत्ता था, मैं सुख से अपने बाल बच्चों के साथ में खाऊंगी, कब खाऊंगी जाने के दिनों में बैठ करके आराम से। और वो क्या गया बाल बच्चे समेत सब कुछ इसी तरह से भाइयों बतला रहे हैं, यदि सचमुच में तुम शांति और सुख चाहते हो तो क्या चाहते हैं नित्यादिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत आप्त पशु भी का पृथ्वी साथ चलई। ये पैसा है नित्यादिदेन अर्थ जो है कमाने के समय, घर में रखने के समय और खर्च होने तीनों समयों में ही पार्टी को देने वाला है। कहते कैसे चोरी डकैती बदमाशी कर सके, जहां तक हो जहां तक एरोप्लेन में जा रहे हैं धन कमाने के लिए और एरोप्लेन गिर पड़े बस मर गए ना, कोई जीवन का ठीक नहीं, एक पैर मृत्यु को के पैर में रखकर और हम धन का नाम कमाते हैं, न जाने कहां से क्या क्या करके धन कमाना सहज ही नहीं है भाई। जो धन कमाते हैं वो समझते हैं, बेटे तो आ जाते हैं ना सहज ही खर्च कर देते हैं वो नहीं समझते, किंतु जिसने धन कमाया वो धन जो समझता है ये धन का क्या करता है और कैसे धन कमाया जाता है कष्ट से ने? लड़के नहीं समझते, वो पानी की तरफ में बहा देते हैं। तो कहते हैं ये कमाने में भी घर में रखा और किसी प्रकार से दहेजों को पता लग गया, अभी मथुरा नवदीप में हम लोगों के मठ के पास ही बैंक से 10,000 रुपया निकाल करके ले आए एक सज्जन मठ के पास ही, और किसी प्रकार से बैंक के कर्मचारियों से ही उन दहेजों का कुछ लिंक कराता है, उन्होंने उसको खबर दे दी, घर में लेकर के रात में रखा ठीक 10:30 बजे के वो हल्लवा हम लोग अपने छतों पर मच के देख रहे हैं, 10-12 आदमी आए बंदूक इत्यादि लेकर के और घर के तालों को तोड़ करके और सब लोगों को मार पीट कर एक आदमी को दो आदमी को जान से मार दिया और वो सब कुछ लेकर के चले गए। रखना भी सहज नहीं है, यदि किसी के पास में कुछ हीरा जवाहरात इत्यादि रखा हो और मालूम पड़ जाए किसी को तो देखो बचना बड़ा खर्ज असंभव हो जाएगा, इसलिए उसकी रक्षा करने में भी, और यदि किसी प्रकार से नष्ट हो गया, एक हमारे परिचित आदमी थे उनको शायद 10-20 लाख रुपया बैंकों में जमा था, और 2-3 वर्ष पहले कुछ कुछ बैंक तक समाप्त हो गए थे, गवर्नमेंट ने उनको ये कर दिया था कैंसिल कर दिया या कुछ हो गया, उनका सारा रुपया एक बैंक में जमा था वो सब एकदम पागल हो गए और कुछ देर के बाद ही मत तीनों अवस्थाओं में गया। अब उन ऐसे जो नित्य आशी को देने वाला जो धन संपत्ति है यदि भगवत सेवा में किसी शुभ कर्म में लगाया जाए तब तो ठीक है, जैसे आज यहां पर भागवत की कथा हो रही है, ये रुपयों का सदुपयोग किसी गरीब आदमी को दिया, भगवान का प्रिय है भगवान, सभी लोग भगवान के सेवक है ऐसा समझ कर जरूरतमंद है उनको दिया गया, अच्छे अच्छे कर्मों में उसे लगाया तब तो वो कुछ गड़बड़ी नहीं करेगा और नहीं तो वो रुपया उस रुपये से जो कुछ भी आप लाएंगे वो तो मूल में तो वो रुपया आशीर्वाद है ना, इसलिए जो जो भी कर्म करेंगे उसके द्वारा घर महल बनाया और कराया। घर महल जब बनाया अब लड़के उसी के लिए लड़ेंगे, पिताजी ये हमको मिलना चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए, वो हमको मिलना चाहिए, ये संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए, बस और भी लड़ करके मरेंगे, पिताजी को भी सुख कष्ट देंगे अपने भी पर। इसलिए कहते नित्यादेन विस्तीन दुर्लभेन आत्मुक्तना, इससे आत्मा की मुक्ति हो जाती है। भगवत भजन तो करते नहीं, फिर उससे प्राप्त होने वाले उन अक्षों से गृह आपत्य गाय पशु भी इत्यादि बाग बगीचे ये सब आशी के कारण है। इसलिए देखो भाई तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु उत्तमं शास्त्री परेशान निष्णातम ब्रह्मण उपसमास। ये सबका सार ये बतला रहे हैं, लौ जोगिंद्र बतला रहे हैं, निम महाराज जी को बतला रहे हैं, और यही नारद जी बतला रहे हैं वसुदेव महाराज जी को, और सुखदेव गोस्वामी ने हम लोगों के लिए कहा, और भी हम लोग आप लोग कह रहे हैं और अपने लिए भी हम कह रहे हैं, आप ही लोगों के लिए नहीं अपने लिए भी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं तस्मात, इसलिए प्यारे भाई जिनको थोड़ी सी भी बुद्धि है, जो लोग बुद्धिमान हैं वो लोग तस्मात गुरु प्रपद देकर गुरु का के आत्मसमर्पण किस लिए, उत्तम वस्तु को जानने के लिए, भगवान के लीला चरित्रों को, और अपने लिए कल्याण के लिए जो जो पहले बतलाया दशम स्कंद तक उसको प्राप्त होने के लिए, भगवान की प्रेमा भक्ति गोपियों की चरणों में अनुरक्ति कैसे होगी, इसको जानने के लिए सदगुरु का पदाश्रय करो। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमं श्राद्धे, ऐसे गुरु हो श्रीमद् भागवत में कि कुछ कुछ जानने लगे, भक्ति के द्वारा बुद्धि टीका इत्यादि के द्वारा नहीं, गुरु के माध्यम से उन्होंने सब गुरु परंपरा के माध्यम से जो भागवत को श्रवण किए हैं उनके, और जो उनकी अनुभूति कुछ है, और संसार से कुछ वैराग्य भी है, दिखलाने के लिए नहीं, जब आत्मा में वैराग्य है, और उनसे भगवत धर्म की शिक्षा लाभ करें, कैसे भगवान को पाया जा सकता है। भगवान ने इसमें बतलाया है, मैं तुमको अपने पाने के लिए ऐसे उपाय बतला रहा हूं, आंख बंद करके भी उन उपदेशों पर जो चलेगा, दौड़ता हुआ भी चले, और जहां पैर रखना चाहिए वो आंख नहीं भी रखे, वो गिरेगा नहीं, ऐसा पद तुमको बतला रहा हूं। वो क्या है, अभी बतलाया, श्रीमंत भद्रानी रथांग पाणी, भगवान का नाम ग्रहण करो, गोविंद दामो धर्माधवे उदुखले संभित कंदुलांच संघंतयंतो मुसले प्रमुद्धा गायन्ति गोप्या जनतांगादा गोविंद दामो धर्माधवे। ऐसे सब नामों को प्रेम पूर्वक करो, गुरु जी से ये शिक्षा ले रही है, इन ऐसे नामों को गुरु पदाश्रय करके शोक मोह भय सबको दूर कर, अभी अकर्म विकर्म और कर्म बतलाया इनको भी छोड़ करके, निष्काम कर्म और कभी छोड़ इसकी भी जरूरत नहीं, भगवत अर्पित कर्म इसको भी छोड़ो, कृष्ण के लिए सब कुछ करो, कृष्ण प्रीति के लिए, कृष्ण को सुख हो ऐसा करो, देखो जो अपने आप भगवान मिल जाएंगे, पैसे ले गोपत की भांति समुद्र को भी तर जाएंगे, और भगवान भी अपने अपने उसके पीछे पीछे चलेंगे, कैसा भक्त है उसकी चरण की धूलि उड़ करके हमारे ऊपर में चल लग जाए, ऐसे भगवान भी उनको खोजते हैं जैसे गोपियों को खोज रहे थे, ये भगवत धर्म का रहस्य है, यदि इस पर हम लोग चलेंगे। और भी बहुत लाया, समय की कमी है, तब यही समझिए, संसार में रहिए, कर्तव्य कर्म कीजिए, माता पिता गुरुजनों का आदर कीजिए, सम्मान करना सीखिए, ये एक स्कूल है ये जगत, यदि आपने उन लोगों का ही आदर नहीं किया, माता पिता गुरुजन और सब लोगों का, तो भगवान का कहां से सम्मान करेंगे। इसलिए ये धर्म से यहीं से सीखिए, फिर इसमें अनासक्त होइए, मीठी वाणी बोलना सीखिए, जैसे कृष्ण बोलते हैं, गोपियां जैसे मीठी टोली बोलती हैं, कपटता मत रखिए, आसक्त मत होइए संसार में मधुमक्खी की भांति, इस प्रकार से रह करके भगवान के प्रिय होने वाले जो में भी कार्य हैं और उन सब में भी श्रेष्ठ है भगवान नाम कीर्तन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलौ नास्ते 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 गति नौ अस्ति एव, तीन बार कहा, फेंक दिया लकीर, पत्थर की लकीर, ब्रह्मा की लकीर खाएगी, इसके अतिरिक्त और कोई कल्याण का उपाय नहीं। इसलिए हम लोगों को इस प्रकार से चलना चाहिए, इन उपदेशों को पालन करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। इसलिए एकादश स्कंद रास्ता है, रास्ता सुना नहीं और धन की बातें तो सुन ली और उस पर अमल नहीं किया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इन पर उपदेश करने के लिए उपदेशों को कह रहे हैं, हम इस पर धीरे धीरे पा, हर नाम का करना क्या इसमें कठिन है, भगवान नाम एक तरफ तो भगवत प्रेम बहुत दुर्लभ है और दूसरे तरफ में उसका पाना बहुत ही सरल सा है, चलते पीते उठते बैठते दिवा नहीं रात्र नहीं कोई विचार नहीं है, पवित्र नहीं है कि अपवित्र है, मैं मर रहा हूं मुझे टट्टी निकल रही है पेशाब हो रहा है, अरे तभी भगवान का नाम करो ना तभी तो हो जाएगा, पवित्रता की कोई जरूरत नहीं, एक तेल ही था दिन भर तेल फिरता था, कल्लू पर बैठकर और बैल के आंखों में वो लगा करके ठूली बांध करके और चलाता, हट 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 बीच बीच में करता जाता और उस पर चढ़ करके दिन भर। एक दिन कोई व्यक्ति मिल गए, अरे बेकूफ दिन भर रात भर ये चलाता है हट 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 करता है, कोई भगवान का एक बार भी तो नाम ले ले, कभी क्या कहूं बड़ी मुश्किल है मुझको समय नहीं मिलता, दिन भर इसमें काम आता हूं फिर मुझे नींद आ जाती है, खाते करके सो जाता हूं फिर उठता हूं और फिर इसमें लग जाता हूं, मुझे समय नहीं मिलता। अरे तुमको समय नहीं मिलता टट्टी पेशाब के समय में क्या करता है, तो उस समय में लिया जा सकता है, हाँ ले लो ले लो कोई बात नहीं। वो बेचारा रात के समय में अपने कल्लू को विराम दे करके लोहिया दे करके जंगल में चला और वहां जाकर के टट्टी पेशाब में बैठ गया और राम 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 राम, जहां जहां पर हरि नाम होगा हनुमान जी सबसे पहले वहां जरूर पहुंच जाएंगे, करोड़ों करोड़ों उनके मुंह करोड़ों करोड़ों पैर करोड़ों करोड़ों जीवाएं से वो भगवान का नाम करते हैं, जहां जहां कोई करेगा वहां पर पहुंच जाते हैं। बस जहां राम राम किया पैखाना करते समय और बस हनुमान जी पहुंच गए, बदमाश देगी तो अशुद्ध अवस्था में टट्टी करते हुए भगवान का राम राम करा और तुमको समय नहीं मिला, एक खा करके एक लात मार, जिस लात को बांधकर रावण और कुंभकर्ण गिर गए और मुंह की खाली और इसको कुछ भी नहीं हुआ, राम 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 कहता रहा। भाई बड़ी विचित्र बात तो, मैंने रावण कुमारा कुंभकर्ण और बड़े लोगों कुमारा थोड़े से मैं हवा में ही गिर पड़े और इसको इतनी जोर से लात मारी इसका कुछ नहीं हुआ, बड़ी चिंता में रहे। थोड़ी देर के बाद में राम शाम हो गई, शाम होने पर रात हो गई, रात होने पर प्रभु जी के पास में राजभवन में पहुंचे जहां पर रामचंद्र जी भी विश्राम करते हैं और उनके ये पैर पलोटते हैं, वहां जाते ही सुना दरवाजे पर रामचंद्र कर, अरे भाई ये क्या हुआ, आज तक तो उनको मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, जाकर के हाथ जोड़ करके करिए प्रभु आज आप आम हो कैसे कर, आज तुमने ऐसे जोर से मुझे लात मारी और फिर कह रहा है ये किस लिए आम हो कर रहे हैं, मारा भी और ऊपर से ऐसा कर दिया है, तो प्रभु मैंने कब कहा, अब मैं जन्म में कभी कल्पना कर सकता हूं ये आपको मारूंगा, मैं कभी भी नहीं ऐसा, तो तुमने नहीं तो हमको मारा, तो कब मारा, अरे ये तो समझो नाम और नामी अभिन्न है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, हमारे नाम में और नामी में अंतर है, जैसे आपने अपने अंधे पुत्र का नाम रख दिया कमल नयन, नयन सुख राम रख दिया, एक बहुत दरिद्र आदमी है उसका नाम रख दिया कुबेर, कुबेर शर्मा, कुबेर खंडलवाल, नाम रख दिया है
और है वो दरिद्र, इसलिए नाम और नामी में यहां पर भेद है। किंतु भगवान के नाम में राम और राम नाम में, कृष्ण और कृष्ण नाम में दोनों अभिन्न है। एक पहलू पे दो सिक्के भी नहीं, एक सिक्का का जो पहलू किधर होता होता है ना, भगवान और नाम में और उनमें यह भी अंतर नहीं है, बल्कि नाम नामी से बढ़कर, नाम नामी से बढ़कर के दोनों एक हैं। जहां नाम आया भगवान नाम, वहीं पर कृष्ण और राम वहां पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जो ही उसने टट्टी के समय में भी राम राम कहा, मैं उसके पास में पहुंच गया और तुमने उसी समय में लात जड़ दी और मेरी कमर टूट गई, पसली हार दी, इसलिए मैंने तब गलती की, फिर उनको ठीक किया, बड़ी सेवा करने लगे। हनुमान ने कान पकड़ा दिया, आज से ऐसा नहीं करूंगा, चलते फिरते उठते बैठते छींकते, अंततः मरने के समय में भी यदि किसी को कट्टी पेशाब हो रहा हो, उल्टी हो रही हो, उसमें भी भगवान का नाम ले तब उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी नाम की महिमा है, ऐसे नाम को लेने में क्या परिश्रम है भाइयों। तब एक बात है, यदि गुरु पदाश्रय करके यदि वो नाम होगा तब तो साजी में हो जाएगा, और नहीं तो कुछ भूले भटक जाएंगे हम लोग। ऐसे नाम करना पहिया होता है, पहिया में समझते हैं, धान दो प्रकार के होते हैं, एक चावल युक्त और एक होता है देखने में धान किंतु भीतर में चावल नहीं होता है, उसको भूसी भी कह सकते हैं। जहां हवा से उड़ाया ना तो वो तो उड़ जाएगा जिसमें कि चावल नहीं है, और जिसमें चावल है वो भाग होकर के देखना चाहिए। शब्द ब्रह्म होता है शब्द, और एक होता है शब्द सामान्य, एक शब्द साधारण और एक होता है शब्द सामान्य। जो लोग स्वयं भगवान नाम करते हैं और उनके हृदय में प्रेम से भगवान का नाम अपने आप आ जाता है, वो नाम शब्द ब्रह्म है ना? और जो नाम ऐसे ही जहां तहां सुन लिया, कल्याण में भाई हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, ये लिखा हुआ आप लोग करना और इसको लिखना, करने की जरूरत है लिखना, कागज खरीद लाओ और उसमें लिखो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, और फिर लिखने के बाद में कहां ले जाएगा, कहां रखेगा, कहां। यदि मान लिया कि दो चार बॉक्से हो गए लिखते 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 और जन्म भर लिखा तो कितना हो जाएगा पुलिंदा, और ये कहां रखेगा। यदि बाजार में बेचो तो पाप हुआ कि नहीं, और यदि और कहीं ले गए उसको डाल दिया तो भी पाप होगा। जमुना में बहा दिया तो भगवान नाम को